मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 9 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और उसका कारण यह है कि कल आप सबने बहुत सी अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं और मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी बात पर थोड़ा गौर फरमाया, उसके बारे में विचार किया और फिर अपने विचारों से मुझे अवगत भी कराया। इनफैक्ट जब आप इस तरह के एक्शन में आते हैं तो मेरी आपसे एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होने लगती है कि जब मेरे प्रिय श्रोता इतने अलर्ट हैं तो स्वाभाविक है कि मुझे कहीं ना कहीं उनसे तो ज्यादा अलर्ट होना ही पड़ेगा। यानी कि वह एनर्जी जो आप लोग ईमेल के जरिए प्रदर्शित करते हैं मेरे अंदर एक नई तरह की एनर्जी पैदा कर देते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल मैंने आपको एक महिला पहलवान, कह लीजिए लड़की पहलवान नीतू सरकार के जीवन का अंश पढ़कर सुनाया था। अंश तो नहीं कहना चाहिए, मेरे पास जो उपलब्ध था उनका, उनके जीवन के बारे में, वो पूरा मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया था और फिर मैंने वह जो क्लिपिंग थी आपको प्रोवाइड भी की थी ताकि आप उसे इत्मीनान से पढ़कर अपने विचार स्थापित कर सके, बना सके और यदि जरूरी समझते हैं तो उसे अपने पास रख भी सके। दोस्तों, इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें मुझे पढ़ने को मिली हैं और यही तो इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी खूबी है कि हर एक इंसान एक तरीके से नहीं सोचता है। हम सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं और हमारा अपना तरीका दूसरे के तरीके से कहीं न कहीं अलग होता है। यही हमारी कह लीजिए कि विशेषता है, जिसे आप कह सकते हैं यूनिकनेस है। याद रखिए कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, वो हमारा ओरिजिनल नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने सोचा, नहीं। बेसिकली हम जिस समाज में रहते हैं, जिस तरीके से हमें सोचना सिखाया जाता है, हम उसी तरीके से सोच पाते हैं, राइट? मुझे जो ज्यादातर प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जो मैं मानकर चलता था कि इसी तरह की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, वह थी उन नीतू के माता पिता को लेकर, नीतू के माता पिता को लेकर कि एक तो नीतू के मना करने के बावजूद माता पिता ने उसका विवाह कर दिया मात्र 13 साल की उम्र में। और उससे भी ज्यादा आक्रोश की अभिव्यक्ति मुझे जो मिली वो उस समय जब वो अपने ससुराल को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर वापस लौट आती है और मां बाप उसे डांटते हैं, बजाय इसके कि उसको सांत्वना देते, उसे सहारा देते, उसे डांटते हैं और फिर चिंतित हो जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद एक दूसरे लड़के से उसकी शादी कर दी जाती है। यहां माता पिता के प्रति मुझे बहुत जबरदस्त आक्रोश का भाव पढ़ने को मिला कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने क्यों किया, ये बहुत गलत है, ये फिर माता पिता के कहलाने के अधिकारी नहीं है, इस तरह की बातें सुनने को मिली। मुझे केवल दो प्रतिक्रियाएं ऐसी मिली हैं जो मैं यूं कहूंगा कि जो मेरी अपनी प्रतिक्रिया से मेल खाती है। मतलब मैं, मुझसे अगर ये प्रश्न किया जाता तो मेरे उत्तर वही होते जो दो उत्तर मुझे प्राप्त हुए हैं। इसमें एक उत्तर है गुड्डू कुमार पांडे का, जो गिरिडीह झारखंड से हैं और हमारे 8वें बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं, और दूसरे हैं मनीष कुमार अवस्थी। कहां से हैं, इन्होंने अपना स्थान का नाम नहीं लिखा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग जब मेल लिखते हैं तो प्लीज अपने स्थान का नाम और अपने स्टेट का नाम भी लिखें। उससे अच्छा है कि मैं आपके स्टेट का नाम, आपके गांव का या आपके शहर का नाम लूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको जो जानते हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। खैर, इन दोनों ने लिखा समाज, कि समाज के प्रति गुस्सा आ रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें इसी बात को समझने की जरूरत है। चलिए मैं थोड़ा सा अब अपने ढंग से विश्लेषण कर देता हूं। शायद यह विश्लेषण सोचने समझने के हमारे दायरे को और विस्तार दे सके और उससे भी बड़ी बात यह है कि शायद हमारे समाज में या हमारे लोगों में इस तरह की जो समस्याएं हैं या उन समस्याओं की जहां जड़ मौजूद है, हम उस जड़ तक पहुंच सकें। और जब तक जड़ उखाड़ा नहीं जाएगा तो जो विष बेल है आप ऊपर से काट दीजिए, कुछ समय के बाद फिर वो हरी भरी हो जाएगी, फिर काट दीजिए फिर वो हरी भरी हो जाएगी और सामान्यतया वही हो भी रहा है। देखिए, समाज को जिम्मेदार मैं क्यों मान रहा हूं मित्रों, और मैं पूरी विनम्रता के साथ इस बात को यहां कहना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अपने विचार आप पर थोप रहा हूं, आपके विचारों को गलत ठहरा रहा हूं। नॉट एट ऑल, मैं केवल अपना कोण आपको दे रहा हूं, और मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी बहाने आप मुझे सुनते हैं तो मेरे विचार आप जानना चाहते हैं। मैं आपके विचारों को बिल्कुल गलत नहीं ठहरा रहा हूं, बस विनम्र निवेदन जरूर है कि आप मेरे विचारों पर भी थोड़ा विचार करें, और आपने जो विचार दिए हैं बकायदे उन पर मैंने विचार किए हैं। समाज को मैं क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, तो इसलिए ठहरा रहा हूं कि देखिए, जो माता पिता ने 13 साल की उम्र में शादी कर दी, चलिए उन्होंने अशिक्षा के कारण कर दी होगी, उनको नहीं मालूम कि 13 साल की बच्ची का विवाह नहीं करना चाहिए बायोलॉजिकली, तो अब बायोलॉजिकली समझ के लिए उनको ज्ञान की जरूरत है और उतना ज्ञान उनके पास नहीं है, तो वो जिम्मेदार है। हम कह सकते हैं कि उनको पढ़ना चाहिए था, पढ़ते तो शायद कुछ समझ में आ जाती। देखिए, मेरे पास जो दो प्रतिक्रियाएं मिली हैं, समाज जिम्मेदार है, ये मैं मान के चलता हूं कि दोनों पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। अब उनकी परवरिश कैसी हुई है, पृष्ठभूमि क्या है, उनकी सोच कैसी है, वो इनके इस शब्द ये उत्तर से तो कहीं ना कहीं झलक जाती है, लेकिन इनफैक्ट मुझे सही तरीके से मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं, याद रखिए, हमारी पृष्ठभूमि से पैदा होते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे हैं, लेकिन उसमें हमारी पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम अपनी पृष्ठभूमि के गुलाम ही होते हैं। बहुत लोगों ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई, अपनी पृष्ठभूमि के विरुद्ध जाकर के अपनी बातें रखी हैं, और ऐसे ही लोगों ने समाज को बदला भी है। तो दोस्तों, अज्ञानता के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, देखिए कि उन्होंने बताया है कि जिससे शादी हुई वो उनसे उम्र में 3 गुना बड़ा था, 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा था, और यहां तक कि वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ था। कल्पना करके देखिए, यहां जरा सा माता पिता की भूमिका में आइए, आप थोड़ा सा घुसिए माता पिता के अंदर आप अपने, कि मैं खुद माता पिता हूं और मेरी एक बच्ची है जो 13 साल की उम्र की है। माता पिता होने के नाते क्या सच में आप 13 साल की अपनी बच्ची की किसी से शादी करना चाहेंगे? और चलिए करना भी चाहे, मान लीजिए कि आप बाल विवाह के समर्थक हैं, तो कम से कम इसके समर्थक तो नहीं हो सकते कि आप अपनी बच्ची की शादी उसे 3-3.5 गुना उम्र के अधिक के लड़के से करें, और वो भी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, लड़का नहीं कहना चाहिए, व्यक्ति से करें। आप कतई नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति में विवाह के इस सिद्धांत की तो जानकारी है कि मैं 13 साल की लड़की का विवाह अगर 45 साल के व्यक्ति से कर रहा हूं, तो मेरी लड़की अगर सामान्य सब कुछ चलता रहा तो बहुत जल्दी वैधव्य की स्थिति तक पहुंच जाएगी, और विवाह का कोई खास मतलब बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, राइट? कौन करेगा? फिर भी ये क्यों कर रहा है? मित्रों, हमें इसी को पकड़ना पड़ेगा कि फिर भी वो क्यों कर रहा है। क्या अपनी इच्छा से वो ऐसा कर रहा है, या क्या उसके ऊपर किसी का दबाव है? और अगर दबाव है तो फिर किसका है? देखिए, वो लड़की लौट आई है, कल्पना करके देखिए, उन मां बाप के दर्द को थोड़ा महसूस कीजिए, उनके एक्शन पे मत जाइए, उस एक्शन के कारणों पर जाइए, उस मां बाप के दर्द को महसूस कीजिए कि लड़की 1 सप्ताह में लौट आई है, और लौटने के बाद सब बता रही है कि मेरे साथ यह हुआ है, इसके बावजूद वो फिर से मजबूर है कुछ और निर्णय लेने के लिए। वो अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं, क्यों नहीं रख पा रहे हैं? कोई तो कारण होगा, क्यों नहीं रख पा रहे हैं? अपने बच्चे को नहीं रख पा रहे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और चलिए, माता पिता दो है ना, तो चलिए मैं एक बार मान लेता हूं कि पिता उस बात को नहीं समझ रहा है। आप ये कतई मत कहिए कि मां भी नहीं समझ रही है। मां समझ रही है, क्योंकि मां खुद उस भूमिका में रह चुकी है, वो जान रही है, संवेदना के स्तर पर वो सारी चीजों को भोग रही, इसके बाद भी वो अपने पति का साथ दे रही है, अपने पति के निर्णय का साथ दे रही है कि नहीं, बच्ची को हम अपने यहां नहीं रख सकते, बदनामी होगी, याद कह रही, बदनामी होगी। ये वो नहीं कह रही कि हम इसे खिलाएंगे पिलाएंगे कहां से, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, नॉट एट ऑल। वो सोच रही कि गांव वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, बदनामी होगी, तो वो अपनी बदनामी से बचने के लिए फिर से अपनी लड़की को एक दूसरी जगह विवाहित कर देते हैं। ये बात अलग है कि फिर वो लड़की वहां जाकर के नाम कमाती है, और आज हम इतना नाम कमाती है कि उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहा गया समाज, अब आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर लीजिए जहां बाल विवाह की बाध्यता नहीं है। और चलिए बाल विवाह की अगर बाध्यता भी है तो विवाह बेसिकली दो लोगों की पसंदगी का सवाल है, और विवाह से जुड़ी हुई जो गली सड़ी गली जो परंपराएं हो गई हैं स्थापित हो गई हैं वो गायब है। सड़ी गली परंपराएं क्या है? एकदम विवाह में ही शादी होनी चाहिए। चलिए हम इस परंपरा को सड़ी गली नहीं मानते हैं, इसका अपना एक पक्ष है, भारतीय समाज लगातार चला आ रहा है। चलिए हम शादी विवाह को आपकी जाति में हो आपके गोत्र में हो जैसा भी आप करना चाहते हैं उस रूप में करिए, लेकिन जो सबसे सड़ी गली परंपरा है वो है विवाह से जुड़े हुए खर्चे, विवाह से जुड़े हुए दहेज तिलक, ये जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि वो जो माँ बाप हैं स्वाभाविक है, आप जाकर के और पता कीजिए कि जिस व्यक्ति से उन्होंने शादी की अपनी 13 साल की मासूम बेटी की, वहां खर्च नहीं लगा होगा। हो सकता है कि जो थोड़ा बहुत खर्च लगा भी हो वो व्यक्ति लड़के के पक्ष ने उठाया हो, और यही स्थिति दूसरी शादी में भी हुई होगी। यानी कि वो माँ बाप चूंकि आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी का विवाह कर सके, तो ऐसी स्थिति में वो सोचते हैं कि बेटी जीवन भर कुंवारी रहे, इससे ज्यादा अच्छा है कि चलो भैया जिससे भी शादी हो सकती है उससे शादी कर दी जाए। और दूसरी बात फिर यह है कि अगर बेटी घर में कुंवारी बैठी रहेगी तो गांव वालों के सामने हम मुंह क्या दिखाएंगे। तो मित्रों जितना आप सोचते चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, इस तरह की स्थितियों के लिए जो जिम्मेदार होता है वो हमारा समाज होता है। तो बस अब आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचिए कि अगर आपको उस लड़की के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना है, आप उसके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज फिर इस समाज को बदलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, उन माँ बाप को दोष देने से काम बनेगा नहीं। तो मित्रों वक्त हो चला है, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।